लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है संत पापा लियो का पुरोहितों के अभियंजन के यादगारी दिवस पर दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा लियो ने यीशु के पवित्र हृदय के महापर्व के अवसर पर 17 जून 2025 को पुरोहितों के अभियंजन की यादगारी मनाई और विश्व भर के पुरोहितों को अपना संदेश दिया। संत पापा लियो ने सभी पुरोहित भाइयों को संबोधित करते हुए कहा कि पुरोहिताई से अभियंजित इस दिवस में, जिसे हम यीशु के पवित्र हृदय के महोत्सव के दिन मनाते हैं, मैं भरोसा और कृतज्ञता में आप सबों का अभिवादन करता हूँ। ख्रिस्त का हृदय जो प्रेम के कारण वेधित है, अपने में सजीव और जीवन देने वाला शरीर है जो हम में से हर किसी का आलिंगन करता और हमें भले चरवाही की अपनी छवि से सुनिश्चित करता है। उनके उस स्वरूप में हम अपनी प्रेरिताई के सच्चे मनोभाव को पाते हैं। ईश्वर की करुणा से प्रज्वलित हम उनके प्रेममय खुशी के साक्षी बनते हैं जो चंगाई, सहचर्य और मुक्तिदायी है। आज का महोत्सव इस भांति हमारे हृदयों में ईश्वर की पवित्र प्रजा की निष्ठामय सेवा हेतु हमारे बुलाए जाने की बात को नवीकृत करता है। इस प्रेरिताई की शुरुआत प्रार्थना से होती है, संत पापा ने कहा, और ईश्वर के संग अपने संबंध के द्वारा पूरी होती है जो हमारी पुरोहिताई की पवित्र बुलाहट के उपहार को निरंतर नवीन बनाते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि कृपा को लेकर सजग रहने का अर्थ, जैसे कि संत अगुस्टिन कहते हैं, एक वृहद और गहरे आंतरिक कक्ष में प्रवेश करना है जो हमें केवल साधारण अतीत की एक यादगारी में बनाए नहीं रखती, बल्कि इसकी समृद्धि को सदैव नवीन बनाती और हमारे लिए प्रस्तुत करती है। केवल इस तरह की यादगारी के द्वारा हम ईश्वर के उपहार को अनुभव करते और उसे नया बना सकते हैं, जिसे उन्होंने हमें दिया है और जिसे वे अपने नाम में हमें दूसरों के संग बांटने को निर्देशित करते हैं। यादगारी हमारे हृदय को यीशु के हृदय से और हमारे जीवन को उनके जीवन से संयुक्त करते हुए शब्द और मुक्ति के संस्कारों को ईश्वर के लोगों के पास लाती है, जिससे प्रेम में मेल मिलाप की एक दुनिया स्थापित की जा सके। सिर्फ यीशु के हृदय में हम ईश्वरीय संतान एक दूसरे के रूप में भाई बहने स्वरूप अपनी सच्ची मानवता को प्राप्त करते हैं। इन्हीं कारणों से मैं आप सबों से आज यह अनुरोध करना चाहूंगा, संत पापा ने कहा, कि आप एकता और शांति के शिल्पकार बने। तनाव की बढ़ती दुनिया में, यहाँ तक कि परिवारों और कलिसियाओं समुदायों में पुरोहित गण मेल मिलाप और एकता स्थापित करने को प्रोत्साहित करने हेतु बुलाए गए हैं। शांति और एकता स्थापना करने की मांग हम सबों से एक बात की मांग करती है कि प्रेरितों के रूप में हम उचित आत्म परीक्षण करें। हम अपने में टूटी हुई चीजों को पिरोने में कुशल हों, जिनके जीवन की देखरेख करने की जिम्मेदारी हमारे लिए सौंपी गई है, जिससे हम लोगों में सुसमाचार की ज्योति को जीवन की कठिन परिस्थितियों में देखने के योग्य बना सकें। यह हमें जटिल परिस्थितियों को समझने और उन्हें परिभाषित करने के योग्य की मांग करती है और मिजाजी भावनाओं से ऊपर उठते हुए भयों और गुजरते फैशन के दबाव से परे जाने की मांग करती है। संत पापा लियो ने कहा कि इसका अर्थ हमारे लिए प्रेरितिक समाधानों को प्रदान करना है जो विश्वास की उत्पत्ति और उसकी वृद्धि करते हुए संबंधों को बेहतर बनाने, आपसी एकमत और समुदायों में एकता की भावना को प्रज्वलित करता है। एकता और शांति के निर्माता होने का अर्थ है सेवा करना, ना कि तानाशाही होना। पुरोहितिक भ्रातृत्व की भावना हमारे लिए एक विश्वसनीय चिन्ह है जो पुनर्जीवित ईश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में घोषित करती है, जहां हम पुरोहितों के रूप में इसे अपने जीवन यात्रा में एक महत्वपूर्ण इकाई स्वरूप साझा करते हैं। संत पापा लियो ने कहा, अतः मैं आप सबों को ख्रिस्त के पवित्र हृदय और ईश प्रजा के सम्मुख अपने पुरोहिताई अभिषेक के दिन कहे गए हाँ को नमीकृत करने का आह्वान करता हूँ। आप अपने व्यक्तिगत कमजोरियों से भयभीत ना हो। ईश्वर परिपूर्ण पुरोहितों की चाह नहीं रखते हैं, लेकिन वे उन नम्र हृदयों की खोज करते हैं जो हृदय परिवर्तन के लिए खुला रहते और दूसरों को प्रेम करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि उन्होंने हमें प्रेम किया। प्रिय पुरोहित भाइयों, संत पापा लियो ने कहा, संत पापा फ्रांसिस ने हमें पवित्र हृदय के प्रति अपनी भक्ति को नवीन बनाने का आह्वान किया है, जहां हम व्यक्तिगत रूप में ईश्वर से मिलते हैं, एक स्थान जहां हम न केवल अपनी आंतरिक कमजोरियों को लाते और उनका समाधान पाते हैं, बल्कि उन्हें भी जो दुनिया को तोड़ने में लगे हुए हैं जहां हम रहते हैं, क्योंकि हम उनमें एक दूसरे के संग परिपूर्ण और खुशीपूर्ण संबंध स्थापित करना सीखते और इस दुनिया में ईश्वरीय प्रेम और न्याय के राज्य की स्थापना करते हैं। ख्रिस्त के हृदय के संग हमारे हृदयों का जुड़ा होना हमें सामाजिक चमत्कारों को पूरा करने के योग्य बनाता है। इस पूरे साल में जहां हम आशा के तीर्थ यात्री स्वरूप बुलाए जाते हैं, हमारी प्रेरिताई उतने ही अधिक फलदायक होगी जितना हम प्रार्थना और क्षमा दान में अपने को संलग्न करेंगे, गरीबों, परिवारों और युवाओं के निकट रहेंगे जो सत्य की खोज करते हैं। संत पापा ने कहा कि हम यह न भूलें कि एक पवित्र पुरोहित पवित्रता को अपने चारों ओर प्रसारित करता है।
Affidiamoci infine tutti alla materna protezione della Beata Vergine Maria, madre dei sacerdoti, madre della speranza.
संत पापा लियो ने सभी पुरोहितों को मरियम पुरोहितों की रानी और माता के हाथों में सुपुर्द करते हुए उन्हें अपने संदेश के अंत में प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। ऐसी दुनिया में जहां सबसे कमजोर लोग जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से सबसे पहले पीड़ित होते हैं, सृष्टि की देखभाल करना आस्था और मानवता का सवाल बन जाता है। यह एक ठोस और गहरा यथार्थवादी विश्लेषण है जिसे संत पापा लियो 14वें ने सृष्टि की देखभाल के लिए 10वें विश्व प्रार्थना दिवस के लिए अपने संदेश में प्रस्तुत किया है, जो 1 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। यह संदेश संत पापा फ्रांसिस द्वारा चुने गए विषय शांति और आशा के बीज को समर्पित है और यह विश्व पत्र लाउदातो सी के प्रकाशन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर है, जो आशा की जयंती को याद करता है जिसे हम अनुभव कर रहे हैं। आज 2 जुलाई को प्रकाशित इस पाठ में संत पापा लियो 14वें ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों की स्थिति पर प्रकाश डाला है, जहां अन्याय, असमानता, लालच और अंतर्राष्ट्रीय कानून और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के कारण वनों की कटाई, प्रदूषण, जैव विविधता का नुकसान व्याप्त है। वे लिखते हैं, हमारी पृथ्वी बर्बाद हो रही है। वास्तव में मानवीय गतिविधियों से प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली चरम प्राकृतिक घटनाएं ताकत और आवृत्ति में बढ़ रही हैं। संत पापा की चिंता तब और गंभीर हो जाती है जब वे याद करते हैं कि सशस्त्र संघर्षों द्वारा लाए गए मानवीय और प्राकृतिक विनाश के मध्यम और दीर्घकालिक प्रभाव हैं, और यह भी कि इस बात के बारे में जागरूकता की कमी है कि प्रकृति का विनाश सबसे ज्यादा सबसे गरीब, हाशिए पर पड़े लोगों, बहिष्कृत लोगों को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में आदिवासी समुदायों की पीड़ा प्रतीकात्मक है। संत पापा लियो ने कहा, हमें बाइबल के उन ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत है जो हमें दुनिया के बगीचे की खेती करने और उसकी देखभाल करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है मानव और प्रकृति के बीच जिम्मेदार पारस्परिकता का संबंध। देखभाल का अर्थ बीजों को उगाना भी है, जो अप्रत्याशित स्थानों पर भी विघटनकारी शक्ति के साथ अंकुरित होते हैं। संत पापा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हम मसीह में शांति और आशा के बीज हैं। आत्मा के माध्यम से शुष्क रेगिस्तान शांति का बगीचा बन सकता है। संत पापा लियो की आशा है कि संत पापा फ्रांसिस का विश्व पत्र लाउदातो सी हमें प्रेरित करता रहेगा, ताकि समग्र पारिस्थितिकी को तेजी से चुना और अनुसरण करने के मार्ग के रूप में साझा किया जा सकेगा, ताकि आशा के बीजों को संरक्षित और विकसित किया जा सके। उधर यूक्रेनी ग्रीक कैथोलिक कलीसिया के धर्म सभा के सदस्यों के साथ एक बैठक में संत पापा लियो 14वें ने धर्माध्यक्षों के कर्तव्यों को याद करते हुए कहा कि हर घायल और पीड़ित व्यक्ति में मसीह की सेवा करें, जो ठोस मदद के लिए आपके समुदायों की ओर मुड़ता है। संत पापा ने सोमवार को यूक्रेनी ग्रीक कैथोलिक कलीसिया के धर्माध्यक्षों की पवित्र धर्म सभा के सदस्यों को बधाई दी। धर्म सभा इस सप्ताह रोम में हो रही है। एकत्रित धर्माध्यक्षों को संबोधित करते हुए संत पापा लियो 14वें ने कहा कि इस वर्ष की धर्म सभा जयंती वर्ष के संदर्भ में हो रही है, जो ईश्वर के सभी लोगों को आशा में खुद को नवीनीकृत करने के लिए आमंत्रित करती है। फिर भी हालांकि आशा निराश नहीं करती, क्योंकि यह यीशु मसीह में ईश्वर के प्रेम पर आधारित है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच आशा की बात करना मुश्किल है। संत पापा ने कहा, इस निरर्थक युद्ध में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के लिए सांत्वना के शब्द खोजना आसान नहीं है, खासकर धर्माध्यक्षों के लिए जो दिल और शरीर से घायल लोगों के साथ दैनिक संपर्क में रहते हैं। फिर भी संत पापा लियो ने आगे कहा, विश्वास और आशा की कई गवाही विनाश के मलबे के बीच खुद को प्रकट करने वाली ईश्वर की शक्ति का संकेत है। संत पापा ने उन्हें और सभी यूक्रेनी ग्रीक कैथोलिक विश्वासियों के प्रति अपनी निकटता का आश्वासन दिया, उन्हें एक विश्वास और एक आशा में एकजुट रहने के लिए कहा और समन्वय के महान रहस्य पर जोर दिया जो हमें उन लोगों के साथ भी जोड़ता है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और ईश्वर ने उनका स्वागत किया। संत पापा लियो ने अपनी टिप्पणी को एक प्रार्थना के साथ समाप्त किया कि ईश्वर की पवित्र माँ की मध्यस्थता से यूक्रेन में जल्दी ही शांति वापस आए। उधर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन और परिषदों एवं लैटिन अमेरिका के लिए पोंटिफिकल आयोग ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 के मद्देनजर जलवायु न्याय और पारिस्थितिकी परिवर्तन का आह्वान करते हुए एक दस्तावेज प्रकाशित किया है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 के मद्देनजर जो 10 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राजील के बेलेम में होगा, इन निकायों ने जलवायु न्याय और आम घर के लिए एक आह्वान, पारिस्थितिक परिवर्तन रूपांतरण और झूठे समाधानों का प्रतिरोध शीर्षक से एक संयुक्त दस्तावेज प्रकाशित किया, जिसे मंगलवार 1 जुलाई को वाटिकन प्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज जलवायु न्याय के लिए कलीसिया की प्रतिबद्धता को दोहराता है और राष्ट्रों व सरकारों को कार्यवाही करने के लिए कहता है जो एक अभिन्न पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने के लिए संत पापा के आह्वान से प्रेरित है और संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र लौदातो सी के अनुरूप है जो इस वर्ष अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज हमारा संदेश कूटनीतिक नहीं है, यह पूरी तरह से प्रेरितिक है। यह एक ऐसी व्यवस्था के सामने विवेक का आह्वान है जो सृष्टि को निगलने की धमकी देती है, जैसे कि ग्रह एक और वस्तु हो। उक्त बात भारत में गोवा और दमाओ के महाधर्माध्यक्ष और एशियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के महासंघ के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराउन ने कहा। उधर कार्डिनल लुइस पास्कुआल ड्री कैपुचिन फ्रायर, जो अपने पापमोचक प्रेरिताई के लिए जाने जाते थे और संत पापा फ्रांसिस के लिए एक आध्यात्मिक मॉडल के रूप में उनकी भूमिका थी, का 30 जून को बोइनस आयरस में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बुधवार 2 जुलाई को पोम्पेई की माता मरियम तीर्थ स्थल पर होगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।